क्षितिज एक सार्थक यात्रा नए क्षितिज की ओर, जिसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है।
प्रिय श्रोताओं नमस्कार। क्षितिज कार्यक्रम में मैं डॉक्टर अजय-भरत सिरतन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपको बता दूं कि क्षितिज कार्यक्रम मॉरीशस स्थित विश्व हिंदी सचिवालय की ओर से प्रस्तुत किया जाता है, जिसके महासचिव हैं प्रोफेसर विनोद कुमार मिश्र जी। प्रिय श्रोताओं, आज के कार्यक्रम के लिए जो विषय चुना गया है वो है अध्यापन कार्य और हिंदी की पुस्तकों का प्रबंध। इस विषय पर बात करने हेतु स्टूडियो में पधारे हैं श्री खेमराज राममनोहर जी। उनके बारे में दो शब्द। श्री खेमराज राममनोहर जी सरकारी प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल के अध्यापक रह चुके हैं। इस क्षेत्र में आपने लंबी अवधि तक अपनी सेवा प्रदान की है। इन दिनों आप सेवा से निवृत्त हैं। श्री खेमराज राममनोहर जी ने हिंदी में BA ऑनर्स और MA की डिग्रियां हासिल की है। आप हिंदी साहित्य और अनुवाद भी पढ़ाते रहे। अध्यापन कार्य के अंतर्गत आपने छात्रों के लिए कई पुस्तकें लिखी है। आपने अनुवाद और व्याकरण संबंधी पुस्तकें भी लिखी है। श्री खेमराज राममनोहर जी नमस्कार।
नमस्कार,
स्टूडियो में आपका स्वागत है।
धन्यवाद।
आइए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न।
अच्छा
श्री खेमराज जी, आपने प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल में कुल मिलाकर कितने सालों तक हिंदी पढ़ाई है, इस पर कुछ प्रकाश डालिए।
धन्यवाद। मैंने प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में लगभग 42 वर्ष मैंने अध्यापन कार्य किया।
और क्या आप इससे संतुष्ट हैं कि आप हिंदी अध्यापक के रूप में ये पेशा चुना?
जी हाँ, मैं बहुत संतुष्ट हूँ, क्योंकि मैं बचपन से हिंदी अध्यापक बनना चाहता था, परंतु शुरुआत में मैं जनरल पर्पस का अध्यापक बना, लेकिन बाद में मैं जैसे मौका मिला मैं हिंदी का अध्यापक बन गया और तब से मैं हिंदी की सेवा करता रहा हूँ।
और इसे बहुत संतुष्ट है?
हाँ, मैं बहुत संतुष्ट हूँ।
क्योंकि
क्या है कि ये मेरी इच्छा थी।
जी,
जैसे मेरे बड़े भाई हिंदी अध्यापक थे महादेव जी, उसी प्रकार से मैं भी बनना चाहता था। ये है
तो आपको इस कार्य से बिल्कुल संतुष्ट है?
हाँ, संतुष्टि है। मैं बहुत संतुष्ट हूँ।
श्री खेमराज राममनोहर जी, आपने प्राथमिक स्कूल और बाद में माध्यमिक स्कूल में हिंदी पढ़ाई, एक अध्यापक के रूप में आप इन दोनों स्तरों पर क्या अंतर करते हैं?
अच्छा, प्राथमिक की पढ़ाई जो है वो तो व्याकरण आदि से संबंधित है, परंतु जब माध्यमिक की बातें करेंगे स्कूल में, वहाँ पर साहित्य की बात आ जाती है।
जी।
और दूसरी बात है कि उसमें तैयारी अधिक करनी चाहिए, क्योंकि वे जो छात्र है वे कैम्ब्रिज स्कूल सर्टिफिकेट और हायर स्कूल सर्टिफिकेट की तैयारी करते हैं, इसीलिए उसमें जो पाठ्य पुस्तकें हैं बहुत, और यहाँ पर बड़ी सावधानी से उन यह पढ़ाई करनी चाहिए ताकि बच्चे इसमें रुचि रखें, ओके, पैदा रखें और किस प्रकार से वे आगे बढ़ सके हिंदी में।
तो प्राथमिक में आप पहली से छठी तक हिंदी पढ़ाते रहे?
जी हाँ।
कितने सालों तक आप प्राथमिक में आपने हिंदी पढ़ाई?
लगभग 6-7 वर्ष तक पढ़ाते
जी।
इसके बाद मैं माध्यमिक स्कूल में आ गया। मैं
मॉरीशस में द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी पढ़ाई जाती है, जिसका मतलब है कि अध्यापक और छात्र दोनों को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, आपके क्या विचार हैं?
हाँ, ये बहुत है कि यहाँ पर जो है दोनों को, छात्र और अध्यापक दोनों को मेहनत करनी पड़ती है। जहाँ पर अध्यापक बड़े रिसर्च करने के बाद अध्यापन कार्य करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो विद्यार्थी होते हैं उनको ध्यान से सुनना पड़ता है, और यहाँ पर अध्यापक को चाहे कि उनके जो कार्य है उनकी देख रेख करें ताकि वो गलती ना करें और उनकी रुचि हिंदी पढ़ने में बनी रहे। इसलिए
भारत में उसकी मातृभाषा हिंदी है, दिल्ली में मातृभाषा हिंदी है, और इस रूप में यहाँ पर हम द्वितीय भाषा के रूप में, सेकंड लैंग्वेज के रूप में हिंदी पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर बच्चे तो अवगत है अपने दैनिक जीवन में जो घरेलू है, घरेलू कामकाज है, जो बर्तन है, जो सारी चीज़ें हैं, सारे सामान उससे अवगत हैं, तो इसलिए उसके पास शब्द भंडार है। जबकि द्वितीय भाषा के रूप में जब हिंदी पढ़ाते हैं तो इन बच्चों के पास इतनी शब्दावली ये नहीं है। आप क्या कहते हैं?
हाँ, ये है कि ये है बोलचाल। अगर वे बच्चे घर में भी हिंदी बोलें और चाहे हिंदी की कक्षा हो तो हिंदी के अलावा किसी और भाषा ना बोलें, हिंदी शब्दों का प्रयोग करें, तब वे कह जाए। और दूसरी बात है कि अध्यापक को चाहिए कि हर विषय लें, जैसे एक दिन करेंगे एक पाठ रसोई घर में, तो रसोई घर में जितनी चीज़ें हैं बर्तनों के नाम आदि ये जानना चाहिए। उसी प्रकार से अगर हम समुद्र तट की बातें करेंगे तो जो शब्द आते जैसे ग्लास बटन बोट की बात है
जी,
ओके, यहाँ पर है वेव्स टाइड जो है उसको हिंदी में बोलें, जैसे शीशे की पेंदी वाली नाव जो है, नारा का पेड़, तो ये सब शब्द जो है ना वे ग्रहण कर लेंगे, आत्मसात कर लेंगे और तभी वे अपनी भाषा में उसका प्रयोग करेंगे, चाहे वो निबंध हो या कुछ भी हो।
क्योंकि ये बच्चे तो केवल कक्षा में हिंदी सुनते हैं और बोलते हैं
जी,
है ना, तो इस प्रकार से अभ्यास कार्य पर ज़्यादा बल देना चाहिए।
जी हाँ, इसीलिए अभ्यास जो कार्य के लिए अनेक पुस्तकें आ गई हैं। और दूसरी बात यह है कि इनको अगर हो सके तो वे सायंकालिक पाठशालाओं में जाएं ताकि वे और हिंदी सीख सकें।
श्री खेमराज रामनोहर जी, ये देखा गया है कि पर्याप्त मात्रा में छात्र शुद्ध हिंदी में अपने विचारों को अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं, इस समस्या को आप अध्यापक के रूप में कैसे सुलझाते रहे?
हाँ, ये तो सच है कि जब विद्यार्थी कक्षा में प्रश्न पूछेंगे तो एक दो शब्द उनको हिंदी में नहीं आती है, तो हमें चाहिए कि उनको बोलने दें, बोलने का अवसर देना चाहिए,
बोलने का माहौल पैदा
हाँ,
करें,
हाँ माहौल, ताकि वे बोलचाल की जो का जो कार्य है वो खो सके। और हर छोटे छोटे वाक्य बोलेंगे जो गलतियां आती हैं उसमें
जी,
उनको सुधारें ताकि वो फिर से कहें। इस प्रकार से वे धीरे धीरे करके वे हिंदी के शब्दों का सही प्रयोग कर पाएंगे।
मैं भी अध्यापक कार्य से जुड़ा रहा, मैं इस समस्या को दूर करने के लिए क्या करता था, मैं कक्षा में छात्रों को बोल देता था कि शुक्रवार के दिन हम इस पर बातचीत करेंगे, तुम 10 वाक्य खोज कार्य करके लाओ और कक्षा में बोलो और तुम्हारे साथ हम प्रश्न करेंगे, तो इस प्रकार से तुमके बोलने का अवसर मिलता है।
हाँ ठीक है।
श्री खेमराज जी, शिक्षण कहें या फिर अधिगम कहें, इसमें पाठ्य पुस्तकों या सहायक पुस्तकों का होना अपरिहार्य है, आपके विचार क्या है?
जी सचमुच आपने कहा ये अपरिहार्य है, क्योंकि बिना पाठ्य पुस्तक का पढ़ा नहीं सकते, चाहे वो किसी भाषा भी क्यों ना हो,
कोई विषय भी।
हाँ हाँ, पर क्योंकि इसीलिए हिंदी के लिए भी चाहे हम मौखिक बोलचाल करें लेकिन उसको पढ़ना चाहिए,
पठन सामग्री
होनी चाहिए ताकि वे पढ़ें और शुद्ध उच्चारण कर पाएंगे
जी।
और तभी अभ्यासकार की पुस्तकें भी चाहिए, जो जिस पर हमने पाठ किया है वो कुछ अभ्यासकार दें ताकि वे बच्चे अभ्यास कार्य करने के बाद वो हिंदी में कुछ पढ़ सके।
और अगर उनके माता पिता हिंदी जानते हों तो इस प्रकार से अगर उसके पास सामग्री होती है, पुस्तकें होती है, तो वे भी उनकी मदद कर सकते हैं।
जी हाँ, निगाहों के जो माता पिता हिंदी जानते हैं वे कम से कम अपने बच्चों को इनकी सहायता करते हैं, उनके सामने पढ़वाते हैं और गलतियाँ निकालते हैं, सुधारते हैं उनको।
पुस्तकों के अभाव से जुड़ी समस्या को आप कैसे दूर करते थे? कहीं पर पुस्तकें नहीं मिलती थी तो इस समस्या को अध्यापक के रूप में आप कैसे दूर करते थे?
हाँ, ये बात है, जब क्योंकि मुझे हिंदी से प्रेम है इसीलिए कभी कभी मैं कुछ ऐसे जो कार्य लिख कर मैं देता था
जी
स्वयं, जैसे एक पाठ है, एक पाठ बनाता था, कार्य करता था। और दूसरी बात है कि हम भारत से भी मैं पुस्तकें मंगवाता था।
अच्छा, पुस्तकें मंगवाते थे?
हाँ,
विशेष
हाँ,
इन छात्रों के लिए।
हाँ विशेष के लिए।
तो ये पुस्तकें आप कैसे मंगवाते थे?
ये मैं स्वयं कभी हर वर्ष में जाता था भारत और वहाँ से पुस्तकें लेकर अपने साथ लाता था। और कभी कभी मेरे कुछ मित्र है भारत में, वे पुस्तकें भेज देते थे।
क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी कुछ पुस्तक का ऑर्डर किया है और दूसरी पुस्तकें आ गई है, ऐसा भी हुआ है?
बहुत कम, बहुत कम। लेकिन जो पुस्तक की सूची में भेजता हूँ वे सभी देखते हैं और भेज देते हैं।
तो इस प्रकार से सही पुस्तकों को लाने के लिए आप व्यक्तिगत रूप से जाया करते थे।
जी ये हाँ, क्योंकि कभी कभी जो पुस्तक चाहे बच्चों को, और देखते हैं बच्चों का स्तर भी देखना चाहिए, इसीलिए उनके स्तर के अनुसार भी पुस्तकें लाता था। मैं स्वयं जाकर वो सभी पुस्तकें चुन चुन कर लाता था, उसका चयन मैं करता था।
तो ये तो बहुत अच्छी बात है। ये पुस्तकें क्या आप केवल स्कूल सर्टिफिकेट या HSC अर्थात हाई स्कूल सर्टिफिकेट के छात्रों के लिए मंगवाते थे?
नहीं, मैं सभी के लिए। एक तो है जो प्रजका परिचय से साहित्य रत्न करते हैं, पढ़ते हैं, उनकी पुस्तकें, और यहाँ तक कि मॉरिशस में जो विश्वविद्यालय है वहाँ पर हिंदी की पढ़ाई होती है BA MA का, तो उनकी पुस्तकें मैं ला देता हूँ उन बच्चों के लिए।
तो ये कैसे आप पता लगाते थे कि कौन सी पुस्तकें निर्धारित की गई हैं?
हाँ, तो जाता था MES में और कौन सी पुस्तकें निर्धारित है मुझे मालूम है, और यहाँ तक जाता था मैं MGI, वहाँ के जो प्राध्यापक है उनसे मिलकर वो लिस्ट में ले लेता था, फिर मैं जाकर मंगवाता था।
तो इन पुस्तकों में पाठ्य पुस्तकें थी और सहायक पुस्तकें थी,
दोनों।
और कुछ पुस्तकें ऐसी भी थी जिसमें टीका का भी
जी हाँ हो? जी हाँ, जहाँ पर ये पाठ्य पुस्तकें हैं जो जैसे गाइड के रूप में आते हैं,
जी हाँ,
ओके, सब है उसमें, ताकि बच्चे जो है ना, विद्यार्थी जो है ना, इसे पढ़कर वे अधिक अंक पा सकें, उसके लिए सहायता हो सके।
तो इस प्रकार से आप ये देखा करते थे कि जो संस्थाएं हैं जिन पुस्तकों को वे निर्धारित करते थे, जो संस्थाएं हैं, तो इस प्रकार से आप उन संस्थाओं से मिलकर देखते थे कि पाठ्यक्रम में कौन सी पुस्तकें निर्धारित है और उन्हीं पुस्तकों को आप लाते थे।
जी हाँ, मैं देखता था अभी, क्योंकि मैं जैसे मैंने निरीक्षक के रूप में भी नहीं कार्य किया शिक्षा मंत्रालय में।
अच्छा।
मैं जाता बैठकाओं में, अच्छा, सायकालिक पाठशाला और कभी शनिवार और रविवार को, और वहाँ पर पहली से लेकर साहित्य रत्न की पढ़ाई होती है।
जी हाँ।
तो मैं देखा ऊपर कौन सी पुस्तकें उनको चाहिए, उनकी सुविधा के लिए मिलाता था।
और क्योंकि आप देखते थे, ये रोज़ आप देखते थे कि किस प्रकार से बच्चों को सुविधा नहीं होती थी पुस्तक के अभाव में, तो इस प्रकार से स्वयं आप इसमें लग गए और इसे पूरा किया।
जी हाँ, क्योंकि मेरा ध्येय था किस प्रकार से हिंदी को लोग अच्छी तरह सीखें और आगे बढ़ें।
तो ये जो पुस्तकें मंगवाने का जो कार्य है, आप इसे संतुष्ट हैं?
जी हाँ, मैं बहुत संतुष्ट हूँ, क्योंकि क्या है कि ये जो पुस्तक जब लाता हूँ ना, तो विद्यार्थी बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उनको जैसे कठिन कठिन जो कार्य उसमें है, शब्द आदि है, और दूसरे है जो प्रश्न उत्तर आदि, कैसे प्रश्न का उत्तर लिखना चाहिए, सब गाइड में है, तो मैं उनके लिए मैं मंगाता हूँ।
प्रिय श्रोताओं, आज का हमारा क्षितिज कार्यक्रम समाप्त होने जा रहा है। मैं याद दिला दूं कि आज आप श्री खेमराज रामनोहर जी को सुन रहे थे। मैं डॉक्टर देवराज चिरतन आप सभी श्रोताओं को आपके ध्यान के लिए धन्यवाद देता हूं। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में मित्र सुनील लक्ष्मण जी के सहयोग से पूरा हुआ, और विशेष धन्यवाद श्री खेमराज रामनोहर जी को जाता है जिन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लेना स्वीकार किया। नमस्कार।
क्षितिज एक सार्थक यात्रा नए क्षितिज की ओर, जिसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है।